दिन भर 24 सितंबर दिन सोमवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में इब्राहिम सोलिह की जीत, अब्दुल्ला यामीन ने मंजूर की हार।
दिस इज अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस, दिस इज अ मोमेंट ऑफ होप, दिस इज अ मोमेंट ऑफ हिस्ट्री फॉर मेनी ऑफ अस, दिस हैज बीन अ डिफिकल्ट जर्नी।
छत्तीसगढ़ के सीरी मामले में सियासत गर्म, सीबीआई कोर्ट ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा।
नरेंद्र मोदी जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे विरोध को, इस कारण से ये कार्रवाई की जा रही, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं।
और खास रिपोर्ट में उन दिक्कतों और चुनौतियों की बात जिनसे जूझ रहे हैं जम्मू कश्मीर के पुलिसकर्मी।
जब मस्जिद में जाते हैं हम इमाम साहब के बोलते हैं ये चिट्ठी हमारी तरफ से, हम जो एसपीओ थे हम नहीं जाएंगे अब दोबारा, हम रिजाइन देते हैं बस।
होंगे आपके पत्र भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप सोनी से। मालदीव के निवर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने राष्ट्रपति चुनावों में अपनी हार स्वीकार कर ली है। आधिकारिक नतीजों के मुताबिक विपक्ष के उम्मीदवार इब्राहिम मोहम्मद ने अब्दुल्ला यामीन को हरा दिया है। टेलीविजन पर अपने संबोधन में अब्दुल्ला यामीन ने कहा कि वे सत्ता हस्तांतरण में मदद करेंगे। अब्दुल्ला यामीन का झुकाव चीन की ओर रहा है, जबकि इब्राहिम मोहम्मद को भारत का करीबी माना जाता है। भारत ने इब्राहिम मोहम्मद को राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए बधाई दी है। रूस ने कहा है कि वो सीरिया को विमान भेदी एक नवीन मिसाइल प्रणाली देगा। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा कि इससे सीरिया को अपनी हवाई सुरक्षा मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
सीरियन वरोजोनिम सिलम व टेचेनी दुख निदेल बुदित पेरेदन सवरेमेन्नी जेनितनी रकेटनी कॉम्प्लेक्स एस।
रूसी रक्षा मंत्री कह रहे थे कि सीरियाई सुरक्षा बलों को 2 हफ्ते के भीतर एक आधुनिक S-300 मिसाइल सिस्टम दिया जाएगा, जो किसी भी लड़ाकू विमान को 250 किलोमीटर के दायरे में आने से पहले मार गिराएगा। इससे 1 हफ्ते पहले सीरियाई बलों ने रूस के एक सैन्य विमान को दुर्घटनावश मार गिराया था, तब रूस ने इसके लिए इसराइल को जिम्मेदार बताया था। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि लीबिया की राजधानी त्रिपोली में विरोधी गुटों के बीच झड़पों की वजह से लगभग 5 लाख बच्चों पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। यूनिसेफ का कहना है कि हाल ही में हुई हिंसा की वजह से 1000 से अधिक परिवारों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा है। यूनिसेफ के मुताबिक पिछले 1 महीने लड़ाई तेज होने के बाद 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। ईरान के शहर अहवाज में हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं। ये लोग उन 25 लोगों के जनाजों में शामिल हुए जो बीते शनिवार को हमले में मारे गए थे। मारे गए लोगों में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जवान भी शामिल थे। ईरान के अधिकारियों ने इस हमले के लिए अमेरिका, इसराइल और उनके सहयोगियों को जिम्मेदार बताया है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के उप प्रमुख हुसैनी सलामी ने कहा कि ये चेतावनी अमरीका और इसराइल के लिए है।
واکنش من به این ماجرا پشیمان کننده ویرانگر।
हुसैन सलामी कह रहे थे कि आपने हमारे वैज्ञानिकों को सड़कों पर मारा है, हम इसका बदला लेंगे, हम वादा करते हैं कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जिससे आपको अपने किए हुए पर पछतावा होगा। ये थे रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के उप प्रमुख हुसैन सलामी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यूरोपियन कमीशन ने पोलैंड को यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में चुनौती दी है। इसकी वजह यह है कि पोलैंड ने एक नया कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के जजों के रिटायर होने की उम्र 70 वर्ष से घटाकर 65 साल कर दी है। यूरोपियन कमीशन ने कहा है कि पोलैंड का ये कानून यूरोपियन यूनियन के कानून से मेल नहीं खाता। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि इससे पोलैंड में अदालतों की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा, लेकिन विवादित कानून का समर्थन करने वालों का दावा है कि इससे सोवियत युग के जजों से मुक्ति मिलेगी। इटली की सरकार ने उस आदेश पर अमल शुरू कर दिया है जिससे अपराध करने वाले प्रवासियों को निष्कासित करने और उनसे इटली की नागरिकता वापस लेने में मदद मिलेगी। हालांकि मेडिकल इमरजेंसी और प्राकृतिक आपदा के मामलों में मानवीय मदद का विकल्प मौजूद रहेगा। इटली के धुर दक्षिणपंथी गृह मंत्री मैटियो सेल्विनी ने कहा है कि इन उपायों से इटली को और महफूज बनाने और मानव तस्करी करने वालों से निपटने में भी मदद मिलेगी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। हिंद महासागर में भारत के करीब बसे एक छोटे से मुल्क मालदीव में राजनीतिक हवा बदल गई है, लेकिन क्या इससे भारत और चीन जैसे बड़े देशों के रणनीतिक हितों पर भी कोई असर होगा? दिन भर में हम करेंगे सवाल की पड़ताल, लेकिन पहले बात मालदीव में हुए बदलाव की। मालदीव में कल नया राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट डाले गए, परिणाम तमाम विश्लेषकों के अनुमानों से अलग आए हैं। संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने जीत हासिल की है, उनका मुकाबला मौजूदा राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन से था। चीन के करीब माने जाने वाले यामीन ने अपनी हार मंजूर कर ली है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता सर्वप्रिया सांगवान।
मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव नतीजों के औपचारिक ऐलान के पहले ही इब्राहिम मोहम्मद सोलेह के समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। राजधानी माले की सड़कों पर सोलेह के समर्थक उनका लोकप्रिय नाम इबू दोहराने लगे। विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को चुनौती देने उतरे सोलेह भी जल्दी ही सामने आए और चुनाव में जीत हासिल करने का दावा किया।
दिस इज अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस, दिस इज अ मोमेंट ऑफ होप।
इब्राहिम मोहम्मद सोलेह कह रहे थे कि ये खुशी का लम्हा है, ये उम्मीद का लम्हा है, ये इतिहास बनाने वाला क्षण है। हम में से कई लोगों के लिए एक मुश्किल यात्रा रही है, एक ऐसी यात्रा जिसका रास्ता जेल या निर्वासन की तरफ जाता था। राजनेताओं और सार्वजनिक संस्थानों को खत्म करने की यात्रा मतदान पेटी पर खत्म होगी, क्योंकि लोग ऐसा चाहते थे। मालदीव के चुनाव पर भारत, चीन और अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों की नजर थी। राजनीतिक विश्लेषकों की राय थी कि राष्ट्रपति के तौर पर अपने कई फैसलों को लेकर विवादों में रहे यामीन को एक और कार्यकाल मिल सकता है। यामीन के कार्यकाल में विपक्ष के कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने चेतावनी दी थी कि अगर मतदान के पहले मालदीव में लोकतांत्रिक स्थिति ना सुधरी तो वो पाबंदी लगाएंगे। चुनाव नतीजों के औपचारिक ऐलान के बाद अब्दुल्ला यामीन ने भी अपनी हार मंजूर कर ली। टीवी पर देश के नाम संबोधन में यामीन ने कहा कि वो देश के लोगों की इच्छा का सम्मान करते हैं।
हम यह कि
अब्दुल्ला यामीन कह रहे थे कि मालदीव के लोग जो चाहते हैं उन्होंने वो फैसला दे दिया है। मैंने नतीजों को मंजूर कर लिया है। मैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह से मिला जिन्हें मालदीव के लोगों ने अपना अगला राष्ट्रपति चुना है। अब्दुल्ला यामीन के कार्यकाल में मालदीव और चीन के बीच नजदीकियां बढ़ी। यामीन के राष्ट्रपति रहते चीन ने मालदीव में निवेश बढ़ाया था, चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता भी किया था। चुनाव के पहले विश्लेषकों की राय थी कि अगर सरकार बदलती है तो चीन के हित प्रभावित हो सकते हैं। यामीन ने इस साल की शुरुआत में मालदीव में आपातकाल लागू कर दिया था। भारत और अमेरिका ने इसकी आलोचना भी की थी। उस वक्त पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नाशीद ने भारत से सैन्य दखल की अपील की थी। भारत और अमेरिका ने सोलेह की जीत का स्वागत किया है। श्रीलंका में निर्वासित जीवन बिता रहे नाशीद ने कहा कि ये यामीन की विदाई का वक्त है। मोहम्मद नाशीद कह रहे थे कि हम सत्ता का आसान हस्तांतरण चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि राष्ट्रपति यामीन पुराने तिकड़म में आजमाएं। अब और कोई आपातकाल, दमन और मार्शल लॉ नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि हम एक खूबसूरत देश को दोबारा बनाएंगे। अब्दुल्ला यामीन ने भी देश के नाम संबोधन में कहा है कि वो तय करेंगे कि सत्ता का हस्तांतरण आसानी से हो।
रिपोर्ट सुना रही थी सर्वप्रिया सांगवान। जीत हासिल करने के बाद विपक्षी गठबंधन ने कहा है कि राजनीतिक कैदियों की रिहाई उनकी प्राथमिकता होगी। मालदीव की अगर बात करें तो ये करीब 1100 छोटे छोटे द्वीपों से बना देश है। यहाँ की आबादी सिर्फ 4 लाख है। मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी है, लेकिन इस देश की रणनीतिक स्थिति अहम है और इसी वजह से भारत और चीन ही नहीं अमरीका की नज़र भी मालदीव के चुनाव पर थी। अब नतीजे सामने हैं और इसके क्या मायने हैं, मैंने ये सवाल किया सामरिक और विदेश मामलों के जानकार सुशांत सरीन से।
भाई, ये नतीजे साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि जिस तरीके की नीतियां अब्दुल्ला यामीन वहां पर अडॉप्ट किए हुए थे और जो एक बड़ी अथॉरिटेरियन किस्म की सरकार वो चला रहे थे, सारी की सारी पावर जो है अपने हाथ में ले रहे थे, एक लिहाज से अर्दोगन का मॉडल फॉलो कर रहे थे तुर्की वाला, वो चीज उनकी हार की वजह बनी। और उसी संदर्भ में हमको ये भी मानना पड़ेगा कि जमहूरियत की जीत हुई। एक और जो उसका पहलू ये भी आएगा उभर करके कि जिस तरीके की पेशन कर रहे थे वो इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों के साथ, वो भी नागवारा गुजरी है मालदीव के लोगों को। और तीसरी चीज ये है कि जो एक ऑपोजिशन की यूनिटी हुई एक कैंडिडेट के पीछे, जो तमाम बड़ी पार्टियां थी, मेरे ख्याल उसका भी एक असर हुआ, तो उनकी वोटें डिवाइड नहीं हुई और वो मेरे ख्याल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा ऑपोजिशन कैंडिडेट की विक्ट्री में।
ये जो मालदीव में अभी चुनाव हुए, इस पर पूरी दुनिया की नजर थी और खासतौर पर जो एनालिस्ट थे उनका ये कहना था कि चीन नहीं चाहता है कि वहाँ सत्ता बदले क्योंकि उसके अब काफ़ी स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं। तो ये जो बदलाव हुआ है इसे आप किस तरह से देखेंगे? ये क्या चीन को एक झटका है या स्थानीय मुद्दे हावी रहे?
देखिए, मेरे ख्याल स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी रहे होंगे, लेकिन चीन को कोई बहुत बड़ा धक्का लगेगा नहीं, क्योंकि चीन की जिस तरीके की निवेश हो चुका है मालदीव के अंदर और जिस तरीके की वो इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल उस पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन शायद कुछ जो स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स की बात हो रही थी कि एक नेवल बेस बनेगा उत्तरी आईलैंड में, जहां से तमाम दुनिया भर की जो सी लेन्स हैं चलती हैं, और अगर चीन वहां पर बैठ जाएगा तो फिर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के ऊपर सवाल या निशान खड़े होंगे, या भारत की जो असुरक्षा है वो बढ़ेगी, और वो सिक्योरिटी कंसर्न्स भारत को भी बहुत थी, अमेरिका को भी थी, इंडियन ओशन का सारा मामला उस पर निर्भर करता था, क्योंकि तमाम वो जो सी लेन्स हैं खाड़ी के देशों से अगर आपको पूर्व एशिया जाना है इंडियन ओशन के थ्रू तो आप वो वाली सी लेन से जाते थे, और अगर वहां पर चीन का एक बेस बन जाता तो वो एक बहुत मेजर सिक्योरिटी कंसर्न होता। वो शायद चीजें जो है उस तरीके के जो प्रोजेक्ट हैं शायद वो खटाई में पड़ जाए, लेकिन चीन की वहां पर एक प्रेजेंस है वो तो मेरे ख्याल अभी बरकरार रहेगी, वो कहीं नहीं जा रही।
अब्दुल्ला यामीन के राष्ट्रपति रहते भारत और मालदीव के संबंध ये माना जाता है कि अब तक के सबसे खराब दौर से गुजर रहे थे, अब इब्राहिम मोहम्मद सोलिह आ रहे हैं, तो क्या कोई बदलाव आप देखेंगे?
बेशक मेरे ख्याल, और क्योंकि देखिए भारत और मालदीव के वैसे पारंपरिक तौर पर बहुत अच्छे रिश्ते रहे, भारत मालदीव का एक लिहाज से सबसे नजदीकी नेबर है, अक्सर मालदीव में जब भी कोई विपदा आती थी तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर भारत ही रहा है वहां पर, भारत का बहुत निवेश भी है मालदीव के अंदर और इंटरेस्ट भी है, जो पुराने रिश्ते हैं वो दोबारा से बरकरार होंगे। और चुनावों से पहले अक्सर हमने देखा कि मालदीव के बहुत सीनियर जो राजनेता था वो यहाँ पर आकर के बात करते थे, अपनी कंसर्न्स को एक्सप्रेस करते थे, और अगर उन सबकी जीत हुई है अभी तो यही मान के चलना चाहिए या यही उम्मीद करनी चाहिए कि भारत और मालदीव के जो रिश्ते हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे और ग्रामीण दौर की जो प्रॉब्लम्स थी वो मेरे ख्याल बुरे सपने की तरह खत्म हो जाए।
ये थे सुशांत सरीन, जो बता रहे थे कि मालदीव में सत्ता बदलने से क्या बदल सकता है।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
अगली खबर भारत के राज्य छत्तीसगढ़ से, जहां सीडी मामले में सियासत फिर गर्म है। प्रदेश सरकार में मंत्री राजेश मूणत की कथित अश्लील सीडी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में आज ही सीबीआई ने रायपुर की विशेष अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनिए रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
पिछले साल 27 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा को छत्तीसगढ़ की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। विनोद वर्मा पर आरोप था कि उन्होंने कथित अश्लील सीडी के सहारे छत्तीसगढ़ के मंत्री राजेश मूणत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। वर्मा को इस मामले में लगभग 2 महीनों तक जेल में रहना पड़ा था। बाद में इस मामले की जांच सीबीआई ने शुरू की थी। सोमवार को इसी मामले में जब सीबीआई ने रायपुर की विशेष अदालत में आरोप पत्र पेश किया तो इस आरोप पत्र में विनोद वर्मा के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का यह आरोप ही नहीं था। अदालत ने दूसरे आरोपों में विनोद वर्मा को जमानत दे दी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और विधायक भूपेश बघेल पर मंत्री के कथित अश्लील सीडी को बांटने का आरोप था। सोमवार को भूपेश बघेल अदालत में तो उपस्थित हुए, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इस मामले में जमानत लेने से इनकार कर दिया कि उन्हें इस मामले में राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है। पत्रकार विनोद वर्मा और भूपेश बघेल के वकील फैसल रिजवी ने कहा,
सीबीआई ने जो चालान पेश किया था सुबह 11 बजे ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष, वो चालान अधूरा था, कोर्ट ने उसको पूरा करने नहीं दिया, तो सीबीआई ने कुछ डॉक्यूमेंट्स हटा के फिर 3 बजे चालान पेश किया गया। 2 लोगों की इसमें जमानत आवेदन लगाए थे, विनोद वर्मा जी ने और विजय भाटिया ने, उनको जमानत 1-1 लाख की ग्रांट हो गई है। भूपेश बघेल जी हैं, इन्होंने कहा ना मैं वकील लगाऊंगा ना मैं जमानत पेश करूंगा।
इससे पहले पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और विधायक भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है।
नरेंद्र मोदी जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे विरोध को, इस कारण से ये कार्रवाई की जा रही, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये पूरा जो केस है वो राजनीतिक बदले के तहत इस कार्रवाई की गई है।
हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस मामले में किसी भी तरह की राजनीति से इनकार करते हुए कहा कि मामला अदालत में है और अदालत को ही निर्णय लेना है।
अभी लाठीचार्ज भी हुआ तो उसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं, दूसरी तरफ सीबीआई का राजनीतिक उपयोग की बात करते हैं। मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया है, जालिम प्रक्रिया है, न्यायालय में जो भी होगा सब बातें सामने आएंगी।
फिलहाल 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए भूपेश बघेल ने जेल में सत्याग्रह करने की घोषणा की है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने भी राज्य भर में जेल भरो अभियान शुरू करने के संकेत दिए हैं। यानी जब तक भूपेश बघेल जेल में रहेंगे, सीडी की राजनीति छत्तीसगढ़ में गरमाई रहेगी। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
उधर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आज छात्र सड़कों पर नजर आए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र बीते एक हफ्ते से वाइस चांसलर रतनलाल हांगलू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन वीसी की एक महिला के साथ कथित बातचीत वायरल होने के बाद शुरू हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान हमारे साथी समीरात्मज मिश्र ने छात्रों से बात की।
क्यों आप लोग कर रहे हैं आंदोलन?
ये लगातार यहाँ के व्यभिचारी कुलपति के खिलाफ यहाँ के छात्र आंदोलित हैं जी। तो आज उसके खिलाफ की उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसकी मांग को लेकर आज हजारों की संख्या में छात्र इस तरह के वाइस चांसलर को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए आज हम सड़क पर आकर विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध सरकार ये जान ले कि हम इसे सड़क से शुरू करें और संसद तक लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है।
कुलपति से आप लोगों ने कोई वार्ता की?
सर वो बात करने के लिए आ कहा रहे हैं।
अच्छा,
तो जाहिर सी बात है कि अब हम लोग इस लड़ाई को पूरी तरीके से लड़ रहेंगे। जेंडर जस्टिस कहने से ही न्याय नहीं होगा, जेंडर जस्टिस की लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
तो क्या लगता है आपको, आपकी बात कैसे सुनी जाएगी?
सर विरोध के थ्रू
अभी तक कुछ सुनी गई है बात आपकी?
जी देखिए, सरकारों ने एकदम आँख बंद कर ली है, इतना गुस्सा है छात्र छात्राओं में। एक कुलपति जो महिला उत्पीड़न के आरोपों में घिरा हुआ है, ये MHRD और प्रधानमंत्री जी लगातार उसे संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली सरकार आज बेटियों को सड़क पे निकलकर अपना हक मांगने के लिए मजबूर कर चुकी है। और हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम लोग यहाँ से लेकर दिल्ली तक मार्च करेंगे और सरकार को जवाब देना होगा महिला सुरक्षा के सवाल पर।
एकदम नैतिकता का पतन हो चुका है। हम छात्रों की मांग है कि जब तक AU का VC वापस नहीं जाता है तब तक हम लोग आंदोलन अनुरोध करते रहेंगे, जैसा कि पहले करते आए हैं। आज हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वुमेन्स हॉस्टल से सुभाष चौराहे तक मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण करा रहे हैं। यदि इस आंदोलन के माध्यम से VC नहीं जाता है तो हम लोग आगे और बड़ा आंदोलन करेंगे।
आप लोगों के साथ और कौन लोग हैं? विश्वविद्यालय के ही छात्र हैं या फिर और भी छात्र हैं?
नहीं, हमारे साथ सभी लोग विश्वविद्यालय के छात्र हैं और सभी हमारे साथ हमारे बहने भी हैं जो अपने हॉस्टल से बाहर निकल कर आए हैं। इस दुराचारी कुलपति के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा हम लोगों ने, जो पिछले विगत 3 वर्षों से आम छात्रों को परेशान कर रहा, अपने तानाशाही कलम दिखा रहा है। उन्होंने जब से आया है केवल और केवल अपने लिए 70 लाख रुपए अपने कार्यालय बनवाया है, लेकिन महिला छात्रावास में एक भी कार्ड नहीं है। मैं ऐसे तानाशाह कुलपति को जवाब देना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर छात्र अपराधी या आतंकवादी हैं जो आप इतने सुरक्षित दस्ते के साथ चल रहे हैं?
किसी भी पद पे महिला शोषित व्यक्ति को रहना इस विश्वविद्यालय और इस संस्था का हमेशा ही दुर्गति करने जैसा होगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि वाइस चांसलर को जल्दी से इस्तीफा देना होगा, नहीं तो हम लोग आंदोलन अनशन करेंगे।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए।
छात्रों से बातचीत कर रहे थे समीरात्मज मिश्र। और अब एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में पुलिसकर्मियों और उनके परिजन पर हमले बढ़े हैं। इन हालात के बीच पुलिसकर्मी दोहरी चुनौती से जूझते दिखते हैं। उन पर कई बार ज्यादती करने और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगते हैं, तो दूसरी तरफ वो खुद लगातार असुरक्षा में घिरे दिखते हैं। सुनिए श्रीनगर से BBC संवाददाता विनीत खरे की रिपोर्ट।
चरमपंथी हमलों और ड्यूटी के दौरान कई घटनाओं में इस साल अब तक जम्मू कश्मीर पुलिस के करीब 40 जवान मारे जा चुके हैं। इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफदार उनमें से एक थे। पुलवामा में पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफदार को अज्ञात लोगों ने घर के किचन में तब गोलियां मारी जब उनके हाथ में उनकी 1.5 साल की बेटी थी। वो 22 अगस्त की बकरीद की रात थी। रात 8:30 बजे का वक्त था। बाहर लड़के पटाखे चला रहे थे। अशरफ और उनके पिता गुलाम कादिर दार ने फैसला किया था कि अगले 15 मिनटों में वो घर के सामने बनी मस्जिद में नमाज के लिए जाएंगे। घर में घुसने के करीब एक मिनट बाद ही गुलाम दर को बेटे के घर से गोलियों की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वो बेटे के घर की ओर दौड़े। उनके पीछे उनकी पत्नी अमीना बेगम भी थी।
उसके कहने के मुताबिक कि मेरे ये गन रखा हाँ, और बच्चों के गर्दनों पर रखा, दो बच्चे थे ना उसके, उन्होंने चाकू रखा, उनको होस्टेज करके रखा उसके पीछे साइड पर। बेटी थी ना उस वक्त,
बेटी उनके गोद में थी,
बिल्कुल
उसकी गोद में होने के बावजूद उनको गोली मारी,
बिल्कुल।
अशरफ की उम्र 45 साल थी और उनके पिता के मुताबिक उन्हें कम से कम 10 गोलियां मारी गई थीं। जम्मू कश्मीर पुलिस में 1,00,000 से ज्यादा जवान काम करते हैं। इनमें से एक बड़ी तादाद SPOs यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की है। चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाइयों में SPOs की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन हाल के हमलों के बाद कई SPOs का कहना है कि वो अपनी नौकरी जारी नहीं रखेंगे। SPO जावेद अहमद को पहले नौकरी छोड़ने के लिए धमकी मिली। मस्जिद में नौकरी से इस्तीफे की घोषणा के बावजूद उन्हें गोली मार दी गई। जावेद अहमद उनका असली नाम नहीं है।
जब मस्जिद में जाते हैं, हम इमाम साहब के बोलते हैं ये चिट्ठी हमारे तरफ से, हम जो SPO थे हम नहीं जाएंगे, आप दोबारा हम रिजाइन देते हैं, बस यही बोलना पड़ता है उधर मस्जिद में।
किसी के सामने बोलना पड़ता है?
उधर होते हैं ना सभी लोग, नमाज पढ़ते हैं उधर, सब लोग होते हैं, गाँव के होते हैं जुम्मे के दिन, उधर सब लोग होते हैं, उधर उनके सामने होते हैं, बोलना पड़ता है।
तो मिलिटेंट तक ये बात कैसे पहुँचती है फिर कि आपने रिजाइन कर दिया?
मस्जिद पे होते हैं, यहाँ स्पीकर होते हैं, वो लाउड होते हैं, उनको पता चलता है कि किसने बोला है।
दो लोगों ने आपको पकड़ा, फायर आपके पाँव में किया?
हाँ, यहाँ टांग, दोनों टांग खाली, बोला ये आप SPO थे, मैंने बोला हमें 15 दिन हो जाए घर में, बस ये बोला।
जावेद अहमद के घर से थोड़ी ही दूर एक अन्य गाँव में रहने वाले एक और SPO ने बताया कि SPO बनने का मुख्य कारण इलाके में बेरोजगारी है। पुलिस पर हो रहे हमलों के बीच अधिकारी भरोसा दिला रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। कश्मीर रेंज के IG स्वयं प्रकाश पानी कहते हैं,
और जो भी यहाँ पे इस फोर्स की सैक्रिफाइस रही है, वो सैक्रिफाइस हमारे पुलिस फोर्स के लिए एक बहुत फख्र की बात है, और हम हर शहादत को, हर उन सैक्रिफाइस को हम पूरी तरह से सराहते हैं, और हमारा यही कोशिश रहती है कि हमारे लड़के, हमारे जवान और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शुड इंप्रूव एंड दे शुड गो इन लॉन्ग वे इन सर्विंग द नेशन।
लेकिन जानकारों के मुताबिक चरमपंथ में बढ़ोतरी का एक कारण पुलिस का पूर्व चरमपंथियों और उनके परिवार के साथ व्यवहार है। इस कारण ये लोग समाज में दोबारा वापस नहीं आ पाते और ये चक्र चलता रहता है। पूर्व DIG AM वटाली,
इसमें फर्क नहीं पड़ा है कि साहब को ऐसी मोरल पर उनका इफेक्ट हुआ है या वो काम नहीं कर रहे हैं। शिकायत ये आती है कि उनको सेटल नहीं होने देते हैं। वंस अ पर्सन लेड आउट हिज आर्म्स, उसको फिर तंग किया जाता है, इतना तंग किया जाता है वो फिर आर्म्स उठाता है, उसका बाप भी मजबूर हो जाता है। फिर कई केसेस ऐसे हैं जहाँ दोनों बाप बेटों ने आर्म उठाए हैं वापस। लिहाजा एक वेल कंसिडर्ड पॉलिसी चाहिए उसके लिए, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी।
पुलिसकर्मी और चरमपंथी कश्मीर के एक ही समाज से आते हैं, इसलिए सुरक्षा को लेकर चिंताएं दोनों तरफ हैं। 24 घंटे ड्यूटी की सख्त चुनौतियों और आशंकाओं पर ये पुलिसकर्मी खुलकर बात तो करते हैं, लेकिन कैमरे से दूर। विनीत खरे, BBC श्रीनगर।
विनीत खरे की इस रिपोर्ट पर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। और आज सोमवार है, आपको इंतजार होता है अपने पत्रों का, तो सुनिए आपकी राय।
आपकी राय। नमस्कार, चिट्ठियों के साथ मैं हूं राजेश प्रियदर्शी, और स्टूडियो में मेरे साथ हैं सूर्यांशी पांडे।
नमस्कार, मेरा भी स्वीकार कीजिएगा। तो चिट्ठियों का सिलसिला शुरू करते हैं और ईमेल पर नजर डालते हैं, जिसमें जिला रत्नागिरी से, महाराष्ट्र से पहला ईमेल हम ले रहे हैं रफीक इब्राहिम परकार का, जो लिखते हैं कि जफर सैयद का ब्लॉग हैदराबाद को भारत में मिलाने में कितना खून बहा, एक ज्ञानवर्धक और बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला था। यही नहीं, उनको शुक्रवार को इमरान खान की दूसरी पत्नी पर रेहान फजल की गई विवेचना भी बेहद पसंद आई।
बहुत शुक्रिया आपका ईमेल भेजने के लिए, और ईमेल भेजा क्योंकि मुझे लगता है कि रत्नागिरी महाराष्ट्र से चिट्ठी को पहुंचने में थोड़ा ज्यादा ही वक्त लगता। बहुत शुक्रिया, आपकी ये तारीफ रेहान फजल साहब तक पहुंचा दी जाएगी।
हाँ। राजेश जी, जो दूसरा मेल है इसमें ना इन्होंने एक दिनकर की पंक्ति का जिक्र किया है, लेकिन किस प्रोग्राम में इस दिनकर की पंक्ति का इस्तेमाल हुआ था ये उन्होंने नहीं बताया है।
अच्छा।
तो ये लिखते हैं कि आपने दिनकर को गलत कोट किया है, सही लाइन ये है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तथस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। और ये लिखते हैं विजय कुमार, विश्व संवाद केंद्र से, देहरादून।
ये बिल्कुल सही कहा आपने, जिस किसी कार्यक्रम में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। आपने जो पंक्तियां भेजी हैं ये बिल्कुल सही है, कविता रामाधारी सिंह दिनकर की बिल्कुल इसी तरह है जैसा आपने बताया। अगर हमने उसको किसी और रूप में पेश किया है तो ये हमारी गलती है, हम ज़रूर चेक करेंगे कि ये गलती किस तरह हुई। बहुत शुक्रिया।
अगला मेल जो है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल से विकास कुमार ने भेजा है, जो ये लिखते हैं कि रूपा झा के द्वारा प्रस्तुत की गई ग्लोबल क्वेश्चन पर अपनी राय वो लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रस्तुति और विषय वस्तु पर जो पकड़ उनकी थी वो बेहद काबिले तारीफ है। और उन्होंने एक बात ये भी लिखी है कि वसतुल्ला खान की पाकिस्तान की डायरी पूरी गूढ़ ज्ञान वाली थी और उन्हें बेहद पसंद आई।
बहुत शुक्रिया आपका तारीफ के इस मेल के लिए। वसतुल्ला खां के ब्लॉग की तारीफ होती रहती है। ग्लोबल क्वेश्चन एक बड़ा आयोजन था जो दिल्ली में हुआ, जिसमें हम ये सचमुच जानना समझना चाहते थे कि भारत के युवा क्या कर रहे हैं, उनके सामने क्या चुनौतियां हैं और उनका क्या सोचना है जो देश के बड़े मुद्दे हैं उनके बारे में। कार्यक्रम लंबा था, आपने उसका संपादित अंश सुना, आपको पसंद आया, ये जानकर हमें खुशी हुई।
राजेश जी, वसतुल्ला खान की एक आलोचना भी आई है, इनकी डायरी की आलोचना हम कह सकते हैं, और ये भेजा है गौतम दत्ता बहादुरगंज किशनगंज बिहार से, जो ये लिखते हैं कि वसतुल्ला खान ने जो कोशिश की थी कि भारत पाक वार्ता विफल होने का एकमात्र कारण क्या रहा था, और उन्होंने ये बात कही कि एकमात्र कारण भारत है जो सही नहीं है। यदि पाकिस्तान की नीयत साफ होती तो पहले वे वैसा माहौल बनाते जो भारत चाहता है, ऐसा उनका कहना है।
वसतुल्ला खान जो लिखते हैं उसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नापसंद भी करते हैं, और ये आपकी राय है। वसतुल्ला खान बहुत वक्त ऐसा होता है कि वो व्यंग कर रहे होते हैं और लोग उसको गंभीरता से लेते हैं, और कई बार वो गंभीर बात कह रहे होते हैं तो लोग समझते हैं कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये उनका ख़ास अंदाज है और उसी अंदाज में उन्होंने ये बात कही होगी। लेकिन आपको हक है कि वो आप उसको पसंद करें नापसंद करें, पसंद करें चाहे नापसंद करें, लेकिन चिट्ठियाँ ज़रूर हमें भेजते रहें ताकि आपकी राय का हमें पता चलता रहे।
और एक चिट्ठी, या मैं कहूँ एक नाम पर कई चिट्ठियाँ आई हैं राजेश जी, और वो राजेश जोशी की जो वार्ता हुई थी आलोक कुमार से, जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, और उनके इस इंटरव्यू पर कई सारे खत हमें मिले हैं। जैसे कि एक भेजा है बंगलुरु से बीपी श्रीनिवास ने, जिन्होंने इस पूरे वार्तालाप की, इस पूरे इंटरव्यू की काफ़ी तारीफ की है। उसके बाद एक खत भेजा है गौतम दत्ता बहादुरगंज किशनगंज से, जिन्होंने इस बात पर भी अपनी टिप्पणी जाहिर की थी कि उन्हें बेहद पसंद आया राजेश जोशी का अंदाज, और उन्होंने बोला तीखे सवाल उन्होंने किए जो बेहद शालीनता से जवाब भी दिए आलोक कुमार ने।
बहुत शुक्रिया आपका। ऐसी ही चिट्ठियां जब आई थी जब राजेश जोशी ने कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी का इंटरव्यू किया था, और अब उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के नेता का इंटरव्यू किया। ये दोनों लोग बिल्कुल विपरीत विचारधारा वाले लोग हैं, और आप ये देख सकते हैं कि हम जब इंटरव्यू करते हैं तो चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के नेता हों या मुस्लिम लीग के नेता हों या वामपंथी नेता हों, सवाल हम ज़रूर पूछते हैं, वो सवाल जो पूछे जाने चाहिए। तो यही वजह है कि ये इंटरव्यू आपको पसंद आते हैं। राजेश जोशी तक हम आपकी जो प्रशंसा है वो ज़रूर पहुँचा देंगे। और अब घड़ी इशारा कर रही है कि हमें आपसे विदा लेना चाहिए। चलते चलते हम आपको अपना पता बता दें, अगर आप हमें डाक से चिट्ठियां भेजना चाहते हैं तो हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और चलते चलते मुख्य समाचार संदीप सोनी से।
बीबीसी समाचार। मालदीव के निवर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने राष्ट्रपति चुनावों में अपनी हार स्वीकार कर ली है। आधिकारिक नतीजों के मुताबिक विपक्ष के उम्मीदवार इब्राहिम मोहम्मद ने अब्दुल्ला यामीन को हरा दिया है। भारत ने इब्राहिम मोहम्मद को राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए बधाई दी है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि लीबिया की राजधानी त्रिपोली में विरोधी गुटों के बीच झड़पों की वजह से लगभग 5 लाख बच्चों पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। गोल्डन ग्लोब रेस में हिस्सा ले रहे भारतीय नौसेना के कमांडर अभिलाष टोमी को फ्रांस की मदद से बचा लिया गया है। नौका से अकेले पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाली इस प्रतियोगिता के दौरान कमांडर अभिलाष टोमी हिंद महासागर में तूफान की चपेट में आने की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ईरान के शहर अहवाज में हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं। ये लोग उन 25 लोगों के जनाजों में शामिल हुए जो बीते शनिवार को हमलों में मारे गए थे। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे तिलक राज भाटिया। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।